ओम शांति। आज का जो विषय हमें दिया है, इस सीजन के बाप दादा की मधुर मुरलियों के सार रूप में है। हर मुरली के अंदर बाबा ने हम बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन करने लिए कहा है, और ये सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ स्वयं की चेकिंग के लिए कहा है, क्योंकि जब चेक करेंगे तभी हम अपने आप को चेंज कर सकेंगे। इसलिए प्रथम मुरली जो बाबा की इस सीजन की भारतवासियों के सामने चली, उसमें बाबा ने बच्चों को रियलाइजेशन करने लिए ही कहा। एक एक स्वमान जो हम बच्चों को मिले हैं उसको रियलाइज करने लिए कहा, और जो अंतिम 18 जनवरी की बाबा की मुरली थी उसमें उस रियलाइजेशन से कैसे लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वो एक रास्ता बताया है, एक पाथ बताया है। सेल्फ रियलाइजेशन द्वारा सेल्फ लिबरेशन कैसे हो सकता है, उसके लिए आज हम आपको 5 कदम बताएंगे। और वो 5 कदम अगर हम अपने जीवन में अपना ले, जो बाबा की मुरलियों के आधार पर चले हैं, तो सचमुच वो मुक्ति, जीवन में मुक्ति का अनुभव हम सहज कर सकते हैं। ये 5 कदम में सबसे पहला है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी हमें करना है कि अपने अंदर क्या क्षमता है, क्या विशेषताएं हैं, क्या शक्तियां हैं, क्या गुण है, क्या सामर्थ्य है। तो सेल्फ डिस्कवरी हमें अपने आप की करनी है। दूसरा कदम है सेल्फ रिकवरी। जहां जहां कमजोरियां हैं, जहां जहां कुछ न कुछ लेश मात्र भी अपने अंदर कोई कमी है, तो रिकवरी सिस्टम भी अपने भीतर ही है, और फिर अपने आप को रिकवर करना है। तो सेल्फ डिस्कवरी के बाद सेल्फ रिकवरी, और उसके बाद वो रिकवरी करने के बाद, ताकि व्यक्ति अपने आप को आगे जीवन में बढ़ा सके, उसके लिए कुछ सेल्फ डिसिप्लिन अपने जीवन में अपनाना होगा। कोई हमें डिसिप्लिन करे, कोई हमें चलाए, ये नहीं। हमें ही अपनी शक्तियों को समझते हुए अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे नियमों को, संयमों को अपनाना होगा और सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ ही जैसे जैसे व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन में आता जाता है तो सेल्फ एम्पावर्ड हो जाता है, सशक्त हो जाता है। तो स्वयं को भीतर से सशक्त करना है, और सशक्त होने से ही हम संपूर्ण रीति से सर्व प्रकार के कारणों से, समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। सेल्फ लिबरेशन, वो स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो ये 5 कदम है, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रिकवरी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ एम्पावरमेंट और सेल्फ लिबरेशन। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिया है वो कोई हमें मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन पुरुषार्थ स्वयं को ही करना है। जब तक स्वयं हम नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकेंगे। कोई कराए तो भी कहां तक कराएगा, व्यक्ति को खुद करना होगा। इसीलिए हमारा ज्ञान है ही सेल्फ रियलाइजेशन से सेल्फ लिबरेशन तक का। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी अर्जुन के अंदर जब भीतर से एक नर्वसनेस आ गई, खोखलापन आ गया और उसने अपने हथियार को छोड़ने की बात कही, तब भगवान ने भी उसको यही सेल्फ रियलाइजेशन कराया कि तुम अपने आप में डिस्कवर करो कि तुम कौन हो। और ये डिस्कवरी जो कराई कि तुम ये शरीर नहीं, सबसे पहली डिस्कवरी उसके लिए थी तुम कौन हो, तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। और वो आत्मा में इतनी समर्थी है, जो उसको हम विकसित करें इतनी पोटेंशियल है हमारे पास। तो बाबा भी जब हम बच्चों को कहता है कि सेल्फ डिस्कवरी करो, अपने आप को अच्छी तरह समझो कि मेरा अनादि आदि स्वरूप क्या है, उस रूप में हम अपने आप को देखें। और जब उस रूप में अपने आप को देखते हैं, विजुअलाइजेशन होता है, मेडिटेशन माना गया, उसमें हम ये विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उस विजुअलाइजेशन से ही ये रियलाइजेशन प्राप्त होता है कि हाँ मैं सचमुच ये हूं। और ये डिस्कवरी जितनी हमारी अधिक होगी अपनी वास्तविकता के बारे में कि मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, मेरा अनादि संस्कार कौन सा है, मेरा अनादि स्वभाव कौन सा है, ये डिस्कवरी करना है, आत्मा की क्षमता के विषय में डिस्कवरी करना। तो ये डिस्कवरी करके जितना जितना हम उसको विजुलाइज करके विकसित करते जाते, डेवलप करते जाते हैं, तो उसके साथ साथ फिर कमजोरियों का भी एहसास होने लगता है कि कहां कहां रुकावटें हैं, कहां कहां वो अटकन आ गई है हमारे जीवन के अंदर जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि 5000 साल की ये यात्रा में चले हैं हम, तो ये यात्रा में चलते चलते कुछ अपने अंदर कमजोरियां भी आ गई है। तो डिस्कवरी जब करते हैं तो खाली अपने अनादि स्वरूप संस्कार स्वभाव शक्ति को डिस्कवर नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में बीच बीच में कौन सी कमजोरियां आ गई है उसको भी हम ढूंढते हैं, उसका भी ज्ञान होने लगता है कि हाँ ये कमजोरी मेरी है, आ गई है, ये कमी चलते चलते मेरे जीवन के अंदर आ गई है। बाबा के ज्ञान के तरफ अगर हम आकर्षित हुए हैं तो इसी बात को लेकर के तो आकर्षित हुए हैं कि दुनिया ने अब तक हमें ना हमारी कमजोरियों के बारे में ज्ञान दिया और न ही अपनी क्षमताओं के बारे में ज्ञान दिया। देह अभिमान की बातें सुना करके हमें फ्लैटर करते रहे, लेकिन बाबा ने हमें वास्तविकता बताई कि हमारी आत्मा की वास्तविक शक्ति क्या है। और यही चीज ने हमें आकर्षित किया कि नहीं, यहां मुझे कुछ प्राप्त होने वाला है। और ये प्राप्ति ने ही हमें इस मार्ग के तरफ आगे बढ़ाया कि हम बाबा के बने। तो इसलिए डिस्कवरी में अपनी शक्तियों के साथ साथ अपने अंदर कहां कहां कमजोरी आ गई वो भी हमें ज्ञान प्राप्त होने लगा। इसीलिए जब बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे ये विकारों ने, माया ने तुम्हें क्या बना दिया, तो ये सुन करके भी कभी कभी हमें हंसी आती है कि देखो बाबा क्या कहता है हमें, सचमुच हम ऐसे बन गए थे। नहीं तो दुनिया में कोई अगर हमें ऐसा शब्द भी कहे तो हमें कितना गुस्सा आ जाता था। लेकिन क्योंकि भगवान ने पहले हमारी वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें ज्ञान दिया और फिर कमजोरियां कैसे आई उसका मार्ग बताया, तो हमें अंदर में ये रियलाइजेशन होकर के खुशी होने लगी और महसूस किया कि हाँ ये बात सही है, ये विकारों को छोड़ना है, ये कमजोरियों को छोड़ना है मुझे। फिर उसके बाद जो रिकवर करना है तो रिकवर कैसे करेंगे? शरीर के अंदर भी जब कोई कमजोरी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो उसको हील करने के लिए शरीर के पास भी इनबिल्ट सिस्टम है। आज किसी को बुखार आ जाता है, सर्दी जुखाम हो जाता है, तो जो नेचर क्योर वाले होते हैं वो क्या कहते हैं? नेचर क्योर का पहला सिद्धांत ही यह है कि अगर बुखार आया तो 3 दिन इसको चलना जरूर है, इसलिए 3 दिन के लिए उपवास कर लो। और उपवास करेंगे तो अपने अंदर जो शरीर के पास इनबिल्ट सिस्टम है हीलिंग करने की, वो हील होना शुरू हो जाता है और 3 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए जो नेचर क्योर के सिद्धांत के अनुसार चलता है वो 3 दिन अपने सिस्टम को आराम दे देता है, रिलैक्स कर देता है। उपवास करना, भोजन न देना, क्योंकि ऐसे समय पर जब बुखार आया है, सर्दी जुखाम है, तो एक कमजोरी आ गई है और कमजोरी आने के बाद भी अगर भोजन लेते रहे तो उसको हजम करने के लिए वो डबल एनर्जी लगानी पड़ती है और डबल एनर्जी लगानी पड़ती है तो वो कमजोरी बढ़ेगी, कम नहीं होती है। इसलिए नेचर क्योर वाले क्या कहते हैं? 3 दिन उपवास कर लो, सिस्टम को आराम दे दो। और जब सिस्टम को आराम दे देते हैं तब फिर उसको सारा ओवरऑलिंग कर सकते हैं आप, उसको ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर एक ताकत आती है फिर से उसको हील करने की और 3 दिन के अंदर ही वो ठीक हो जाता है। कहने का भावार्थ के शरीर के पास भी अगर इनबिल्ट सिस्टम है तो आत्मा के पास भी इनबिल्ट सिस्टम है, जो चलते चलते हमारे अंदर भी कमी कमजोरी आ गई है उसको हील करने की सिस्टम आत्मा के पास भी है, सिर्फ हमें वो विधि मालूम नहीं है। और इसलिए बाबा कभी कभी साकार मुरलियों में ये बात बहुत अच्छी तरह से कहते थे कि बच्चे 7 दिन के क्वारंटाइन में बैठ जाओ। क्वारंटाइन में बैठना माना क्या? कि अपने आप को हील करो अंदर से, कि जब ऐसी कमी कमजोरी को निकालना हो तो उस समय नेगेटिव चिंतनों का भोजन नहीं देना चाहिए उसको, वहां से उपवास करो और बुद्धि को बाबा में लगाओ ताकि वो सकाश जो बाबा से हम प्राप्त करें उससे शरीर आत्मा की भी ओवरहोलिंग होने लगती है और धीरे धीरे जो हमारी कमी कमजोरी है उसको हम निकाल सकते हैं। उसके कॉन्शियस नहीं बन जाओ कि हाँ मैं ऐसा हूं, नर्वस नहीं हो जाओ, लेकिन बाबा से बुद्धि योग जोड़ करके अपने अंदर वो सकाश को प्राप्त करते हुए उस सकाश के आधार से वो कमी कमजोरी को रियलाइज करते हुए उसको दूर कर देना है। तो इसलिए रिकवरी सिस्टम को जागृत करना है और अपने आप को भीतर से ही हील करना है, ठीक करना है। और इसलिए भक्ति मार्ग में भी ये जो उपवास की सिस्टम इन्होंने चलाई है ये हमारा ही तो यादगार है कि उस समय उस कमजोरी को बढ़ावा देने वाली जो बातें हैं उसके कांटेक्ट में आप कम आओ, ऐसे माहौल में अपने आप को नहीं रखो, लेकिन वहां से अपने आप को हटाते हुए अच्छे माहौल में, अच्छे संघ में, अच्छे वातावरण के अंदर, ताकि हमारी बुद्धि उन बातों में बिजी हो जाए और वो कमजोरी की बातों के लिए उसको समय ही न मिले। जो कमजोरी हमारे अंदर है उसी समय अगर उसको ऐसा संग दोष मिल जाए, ऐसा वातावरण मिल जाए तो क्या होगा। बाबा इसीलिए कई बार कहते हैं कि ऐसे समय में पर चिंतन करने वालों के पास तो कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में अगर पर चिंतन वालों के पास बैठे तो क्या होगा। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत के प्रभाव में भी अगर आए, क्योंकि ऐसे समय पर ये पर का इफेक्ट ज्यादा होने लगता है, तो ऐसे समय में अगर उनके संग में बैठे, उस वातावरण में गए, तो वो हमारी बुद्धि को ऐसा प्रभावित कर देगा जो रिकवर होने के बदले क्या हो जाएगा, ज्यादा बीमार हो जाएंगे। उसमें से बाहर निकलना तो छोड़ो, लेकिन और उसके वश हो जाएंगे। तो इसलिए ये पर जो है, तीन पर जो हमेशा गुलजार दादी भी बताती है कि तीन पर से अपने आप को सावधान कर दो, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत के प्रभाव से हमें अपने आप को मुक्त कर देना है। और उस समय स्वमान या स्वचिंतन, रिकवरी वहां से होगी, स्वचिंतन, मुरली का चिंतन हम करें तो स्वचिंतन करो, मुरली का चिंतन करो, स्वदर्शन करो, स्वदर्शन की विधि को अपनाओ, अपने अंदर अपने आप में झांको, कहां ना कहां हमारे अंदर कोई ऐसी बात है जिसके कारण मेरे अंदर ये उदासी आई है और मुझे उससे अपने आप को रिकवर करना है। और श्री मत के साथ में रहो। लास्ट की मुरली में भी बाबा ने इसी सीजन में बताया था कि शिव बाबा का हाथ कौन सा है, शिव बाबा का हाथ कौन सा है, बाबा के हाथ में हाथ और साथ चलना बाबा हमेशा कहते हैं, तो शिव बाबा का हाथ कौन सा है, श्रीमत का हाथ। तो श्रीमत, स्वदर्शन और स्वचिंतन, शुभ चिंतन, मुरली का चिंतन करें, और जितना ये चिंतन हम अपने आप को देंगे उतनी रिकवरी सिस्टम हमारी फास्ट हो जाएंगी। भीतर चले जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, क्वारंटाइन में अपने आप को ले जाओ, तब रिकवरी अपनी हो जाएगी जल्दी। और जैसे ये रिकवरी शुरू होती है तो सेल्फ डिसिप्लिन, उसके बाद हमें जीवन के अंदर, ताकि दोबारा ऐसी उदासी के साथ साथ दोबारा ऐसी परेशानी ना आए, उसके लिए हमें अपने आप में कुछ न कुछ दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है कि ये बात दोबारा मेरी रिपीट न हो। इसीलिए दादियां हमेशा बताती है कि मम्मा क्या करती थी, पुरुषार्थ का अर्थ ही ये स्पष्ट करती थी कि पुरुषार्थ उसी को कहा कि वो कमजोरी दोबारा मुझे मेरे पास आए नहीं, तब कहेंगे कि हां सचमुच पुरुषार्थ किया। अगर वही गलतियां हमसे बार बार होती रहे, वही बातों के शिकार हम बार बार होते रहे, तो हमने पुरुषार्थ ही क्या किया। तो पुरुषार्थ इसको कहा जाता है कि जहां हम अपनी समझ के आधार पर पुरुषार्थ करके उसको ओवरकम कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे अपने आप में कुछ दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता होगी। दो मिनट साइलेंस। तो इसलिए कहा कि सेल्फ डिसिप्लिन अर्थात कि उसके बाद वो परहेज को अपनाना, जैसे रिकवरी करने के लिए उपवास जरूरी होता है, इसी प्रकार सेल्फ डिसिप्लिन से हम अपने आप में एक परहेज ले आते हैं कि ये चीजों से अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो ये चीजों को मुझे स्वीकार नहीं करना है। इस चिंतन से अगर मेरी अवस्था खराब हो रही है, मेरी स्थिति में गिरावट आ रही है, तो ये चीजों का मुझे परहेज करना जरूरी है। तो ये परहेज को अपनाना जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। उसके लिए किनारा नहीं करते हैं हम, लेकिन परहेज से जब हम अपनी कमजोरियों का द्वार पहचान लेते हैं कि ये द्वार है, यहां से ये कमजोरी आती है, तो वहां से परहेज रखने से हम भीतर से अपने आप को सशक्त बनाते हैं। इसीलिए कहा सेल्फ डिसिप्लिन से फिर आता है सेल्फ एम्पावरमेंट, कि जब वो द्वार हमने बंद कर दिया कि यहां से कमजोरी का आना है तो उसको हमें बंद करना है, तो इसको किनारा करना नहीं कहा लेकिन एक विधि को अपनाई कि भई ये चीज मेरी आत्मिक स्वस्थता के लिए मुझे सूट नहीं करती है, मुझे उसको स्वीकार नहीं करना है। नहीं तो बार बार उस वातावरण के अंदर हम जाते हैं, बार बार उसके परवश होने लगते हैं, तो उतना ही धीरे धीरे हम अपनी आत्मिक शक्ति को भी क्षीण करते हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प करना जरूरी है। दृढ़ संकल्प माना जैसे नए साल का दिन होता है, 18 जनवरी के दिन होते हैं, हम रियलाइज करते हुए दृढ़ संकल्प अपना लेते हैं, बाबा के कमरे में बैठेंगे, सुबह से अमृत वेले से इतना पावरफुल स्थिति में अपने आप को स्थित करते हुए, महसूस करते हुए, आज से लेकर के मैं ये बातों का दृढ़ संकल्प करता हूँ, अपने पुरुषार्थ में ये बातों को मुझे अपनाना है। लेकिन कुछ ही समय के बाद देखा जाता है वो दृढ़ता भी खत्म हो जाती है, वो संकल्प भी खत्म हो जाता है और फिर हम वही के वही शिकार हो जाते हैं। थोड़ी समय के अंदर फिर क्या कहते हैं, क्या करें, माया आ गई। माया बड़ी जबरदस्त है ना, कब तक युद्ध करते रहेंगे। बाबा भी तो कहता है माया पहलवान होकर के लड़ती है, तो हम हार जाते हैं, खत्म हो जाता है हमारा वो संकल्प भी खत्म हो जाता है, दृढ़ता भी खत्म हो जाती है। वास्तव में संकल्प हमारा दृढ़ क्यों नहीं रहता है, जब 18 जनवरी समर्थी दिन पर हमने ये संकल्प किया, नए साल को बाबा ने जब वरदान दिया ऐसे समय पर हमने संकल्प किया, उसके बाद भी वो संकल्प हमारा कायम क्यों नहीं रहता है। उसकी विधि बाबा ने बताई है कि हर रोज अमृत वेले उस संकल्प को रिवाइज करो, उसको याद करो। क्या होता है कि जिस दिन हमने संकल्प कर लिया, बस उसके बाद कभी हम उसको स्मृति तक में नहीं लाते हैं कि हमने मधुबन गए थे तो क्या संकल्प किया था। दोबारा वो संकल्प हम इमर्ज भी नहीं करते हैं, उसको याद भी नहीं करते, रिवाइज भी नहीं करते। इसीलिए धीरे धीरे उसमें से दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और फिर हम वो कमजोरी के वश हो जाते हैं। इसलिए हमारा पुरुषार्थ होता ही नहीं है और वहां का वहां ही हमारी स्थिति देखो, और भी कभी कभी तो नीचे आने लगती है ऊपर जाने के बजाय। वो संकल्प भी खत्म हो गया, दृढ़ता खत्म हो गई, फिर कहते पता नहीं क्या हुआ। उसके लिए बाबा ने जैसे एक मुरली के अंदर मुझे याद आती है बताया था कि बच्चे अमृत वेले वो दृढ़ता के बेल्ट को टाइट करो। उसके लिए जो कहा सेल्फ चेकिंग, वहां सेल्फ चेकिंग करने की आवश्यकता है। जो बाबा ने कहा कि हर रोज रात्रि को अपने आप को देखो कि आज सारे दिन में कहां क्या बात आई, कैसे कैसे हमारे जीवन के अंदर कोई ना कोई कमजोरी के हम शिकार हुए, कहां वो दृढ़ संकल्प हमारा कम हुआ, और फिर अमृत वेले ये बेल्ट को टाइट कर दो ताकि दोबारा दूसरे दिन ये चीज रिपीट ना हो। तो हर रोज जो दृढ़ संकल्प हमने मधुबन में किया है, 18 जनवरी के दिन किया है, नए साल के दिन किया है, शिवरात्रि पर किया है, तो उस संकल्प को हर रोज अमृत वेले रिवाइज करना। क्योंकि जो अमृत वेले रिवाइज करता है उसको, तो दिन भर में फिर उसकी स्मृति रहती है। अमृत वेले जो स्मृति को अपनाया है, सारे दिन में उसका प्रभाव रहता है। तो दिन भर में भी उसको बार बार चेक करते जाना, कहीं हम उस संकल्प से ढीले तो नहीं हुए, कहीं हम उस संकल्प से ढीले तो नहीं हुए, तब वो दृढ़ संकल्प सदा काल के लिए हमारा साधन हो जाएगा, हथियार हो जाएगा और वो कमजोरी सदा के लिए मिट जाएगी। तो सेल्फ डिसिप्लिन, दृढ़ता के संकल्प को हर रोज रिवाइज करते हुए, परहेज को अपनाते हुए और अपने जीवन के अंदर चेकिंग करके ये चेंज लाने की आवश्यकता है। उसके लिए हम आपको एक ट्रायंगल पुरुषार्थ देते हैं, और ट्रायंगल पुरुषार्थ ये है चेक, चेंज एंड क्रिएट। सी, तीन सी हम आपको देते हैं। तीन सी माना चेक, चेंज एंड क्रिएट। चेक करो सारे दिन में, समय प्रति समय अपने आप को रिवाइज करते जाओ, चेक करते जाओ, उस दृढ़ संकल्प है बराबर, कहीं कोई कमजोरी ने उसको छीनने का प्रयत्न तो नहीं किया, तो चेक। और अगर थोड़ा बहुत कुछ संकल्प में भी आया हो तो तुरंत चेंज, तो चेक एंड चेंज। चेक एंड चेंज करने के बाद क्रिएट, फिर से दोबारा अपने स्वरूप को वापस क्रिएट कर लो, रिक्रिएट करो अपने आप को। तो चेक एंड चेंज एंड क्रिएट, ये तीन सी ट्रायंगल पुरुषार्थ को अगर अपनाएंगे तो जीवन के अंदर बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। या दूसरे शब्द में कहा जाए तो चेक, चेंज एंड फ्लाई। जो बाबा कहते हैं वाई वाई में नहीं जाओ, कारणों में नहीं जाओ, लेकिन चेक, चेंज एंड फ्लाई, उसको खत्म कर दो उस कारण को और फ्लाई करो, उड़ो। तो चेक, चेंज एंड फ्लाई करो, या चेक, चेंज एंड रिक्रिएट करो अपने आप को, तब जाकर के वो दृढ़ संकल्प हमारा बरकरार रहेगा और वो जीवन में सही पुरुषार्थ के दिशा में हमें आगे बढ़ाएगा। तो ये ट्रायंगल पुरुषार्थ जिसको कहा जाए चेक, चेंज एंड क्रिएट, या चेक, चेंज, फ्लाई, चेक, चेंज, फ्लाई, ये तीन सारे दिन के अंदर हमें बार बार अपने जीवन में लाना होगा। और फिर जब इस विधि से हम सेल्फ एम्पावर्ड कर लेते हैं अपने आप को, सेल्फ एम्पावर्ड माना स्वयं को सशक्त बना लेते हैं, अपना ही सशक्तिकरण अंदर से आने लगता है, धीरे धीरे अवस्था हमारी मजबूत होने लगती है, और जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं एक प्रोग्रेस का अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने जो हम बच्चों को कई बार ये उलना दिया है मुरलियों में सीजन में, कि बाबा जब बच्चों की रिजल्ट को देखता है तो बाबा उस रिजल्ट से प्रसन्न नहीं है, और इसीलिए बाबा बार बार अब समय का एहसास करा रहे हैं कि बच्चे समय का अब बिगुल बजने वाला है। इस सीजन की हर मुरली में अगर देखें तो हर मुरली के अंदर बाबा ने समय के महत्व को हमें एहसास कराना चाहा है कि अब समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अब अपनी अवस्था को हम ऐसे मजबूत बनाए, सशक्त बना दे कि कोई भी प्रकार का तूफान हमें हिला नहीं सके। तो जितना ये ट्रायंगल पुरुषार्थ को हम अपने जीवन में अपनाते हैं उतना ही हमारा भीतर से सशक्तिकरण हो जाता है, और उससे हमारी अवस्था, हमारी इंटरनल स्टेज मजबूत होने लगती है, पावरफुल होने लगती है। बाबा ने हम बच्चों को ये कई बार कहा है कि बच्चे नॉलेजफुल तो है लेकिन पावरफुल बनने की कमी है, तो सशक्त बनना माना अब पावरफुल बनना है। तो जितना उस बात का रिवाइज हम करते रहेंगे, चिंतन में लाते रहेंगे, उतना हम भीतर से सशक्त होते जाएंगे, पावरफुल होते जाएंगे, और ये पावरफुल हम जितने बनते हैं तो कहा कि हाँ प्रोग्रेस हो रही है, हमारी आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने की खुशी, आगे बढ़ने की अंदर में एक संतुष्टि स्वयं को होने लगेगी। तो इसलिए ये स्वयं को सशक्तशाली बना करके हमें जीवन के अंदर, ये आध्यात्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ने का निरंतर अनुभव करना है, जिसके लिए बाबा ने मुरलियों में कहा कि बच्चे के पास ये अनुभव की अथॉरिटी आ जाएगी, तो ये अनुभव की अथॉरिटी के आधार से आपको कोई नहीं हिला सकता है। तो जितना अपनी अवस्था मजबूत करना, अवस्था मजबूत करना माना स्वयं को अनुभव की अथॉरिटी बना देना, एक एक चीज का हम प्रयोग करते जाए अपने जीवन के अंदर और अपने आप को सशक्त बनाते जाए। जो ट्रायंगल पुरुषार्थ हम अपनाते हैं उस ट्रायंगल पुरुषार्थ से साथ साथ प्रयोगशाला, हम अपने भीतर अपने जीवन में बना दे और अपने ऊपर प्रयोग करें। अभी बाबा जो समय का एहसास कराता है, अब दूसरों को देखने का समय नहीं है, क्योंकि दूसरों को हम देखने जाएंगे तो हम अपनी उन्नति करना भूल जाएंगे। इसलिए अब स्वयं के ऊपर ही हमारा फोकस चेंज हो जाए। जितना हमारा फोकस अपने ऊपर होगा, उतना हम अपने आप में उन्नति को प्राप्त करते जाएंगे, अपनी शक्ति को विकसित करते जाएंगे, अपनी अवस्था को मजबूत बनाते जाएंगे और अपनी स्थिति को निरंतर, जो बाबा कहते हैं बच्चे सदा, सदा शब्द को अंडरलाइन कई बार इस सीजन में बाबा ने कराया, सदा शब्द को अंडरलाइन करो कि सदा शब्द जितना अंडरलाइन रूप में होगा उतना आगे बढ़ेंगे। हम करते हैं, महादानी भी बनते हैं, जो बाबा ने कहा वो सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए, सदा नहीं रहता है हमारा। थोड़े समय के लिए एक जैसे कि बूस्टर लगता है, बाबा की मुरली जब चलती है तो थोड़ा बूस्टर लगता है, चलता है और फिर हवा गायब हो जाती है ना। कभी कभी तो यहां से स्टेशन तक जाने में ये सारी हवा हमारी निकल जाती है, वहीं से परीक्षा शुरू हो जाती है और कहते देखो बाबा के घर में संकल्प करके निकले और यहां ही परीक्षा आई और फेल हो गए। ये रियलाइजेशन हो तो बहुत अच्छा, लेकिन ये रियलाइजेशन भी खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बार बार यही कहा है कि सदा शब्द अंडरलाइन करो। और सदा शब्द को बाबा क्यों अंडरलाइन करा रहा है, उसके पीछे भी बाबा का बहुत गहरा भावार्थ है, क्योंकि जो सदा शब्द को अंडरलाइन करता है वो बहुत काल का पुरुषार्थ, जो बाबा हमेशा कहते हैं बहुत काल का राज्य भाग्य अगर प्राप्त करना है तो बहुत काल का पुरुषार्थ आवश्यक है। बहुत काल का पुरुषार्थ सालों में गिनती नहीं होता है, इसलिए बाबा ने इस साल 2-3 मुरलियों में ये बात कही है कि बच्चे 70 साल तो बीत गए, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो हमने कितना प्रोग्रेस किया। तो बहुत काल का अभ्यास अर्थात जब से हम बाबा के बने हैं तो निरंतर हमारी कंटिन्यूटी अवस्था की कितना समय तक रहती है। अभी एक मिनट में हम याद में बैठे हैं और फिर बुद्धि योग हमारा टूट जाता है, कहीं और भटकने चले जाता है, कहीं और दिशा में चले जाता है और फिर आता, तो ये योग की कंटिन्यूटी तो नहीं हुई ना, ये बहुत काल का अभ्यास तो नहीं हुआ। एक घंटे में हम बैठे और हमारा योग अगर 5 मिनट लगता है या 10 मिनट लगता है तो क्या इसको योगी कहेंगे हम? तो सदा शब्द माना अगर एक घंटे में बैठे तो 5 या 10 सेकंड अगर बाहर गया तो ठीक है, वो कंटिन्यूटी है। लेकिन अगर अभी तक भी हमारी शिकायत यही बनी है कि क्या करे, माया आ जाती है या माया हमें परेशान कर रही है, तो इसको कंटिन्यूटी नहीं कहते। कंटिन्यूटी माना कि जितना समय हम बैठे उतना समय तक हमारी बुद्धि एकाग्र रहे, इधर उधर जरा भी कहीं हिले नहीं, उसको कहते हैं कंटिन्यूटी, उसको कहते हैं सदा। अगर हमें अभी तक भी युद्ध करना पड़ता है तो ये सदा नहीं हुआ, ये बहुत काल का अभ्यास नहीं हुआ है। बहुत काल माना जितना समय हम बैठे हमारी बुद्धि की लौ, हमारी आत्मा की जो लौ है वो शिव बाबा के सिवाय और कहीं ना जाए, ये है एकाग्रता। और ये एकाग्रता की स्थिति हमारी जितनी निरंतर होगी उतना हम स्वयं में सशक्त बनते जाएंगे। अगर बार बार हमें अभी तक भी युद्ध करते रहना पड़ता है, हमने ऐसी कोई विधि ही नहीं अपनाई माइंड को सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए, तो हम सशक्त कैसे बनेंगे, समर्थ कैसे बनेंगे, शक्तिशाली कैसे बनेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट। तो सेल्फ डिसिप्लिन से ही सेल्फ एम्पावरमेंट अपने अंदर आएगी। और ये सेल्फ एम्पावरमेंट जितनी हमारी होंगी उतनी सेल्फ लिबरेशन। बाबा ने 18 जनवरी की मुरली के अंदर ये बात बहुत स्पष्ट कर दी कि ये साल हमको कौन सा साल मनाना है, हाँ, मुक्त वर्ष मनाना है। जब बाबा ने साल के लिए प्रोग्राम दे दिया कि ये साल हमें मुक्ति का वर्ष मनाना है, मुक्ति किन किन बातों से मुक्त हो जाना है, तो जितना हम स्वयं सशक्त होंगे उतनी मुक्ति का अनुभव सहज कर सकेंगे। जितना हमारा पुरुषार्थ निरंतर और सदा वाला होगा उतना मुक्ति सहज अनुभव कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने एक बात कही कि बच्चे कारण नहीं देना, कारण देखने जाएंगे तो कारण तो हजारों निकल आएंगे, ये हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, ये हुआ, ये आवाज हुआ इसीलिए मेरा योग डिस्टर्ब हो गया। अब जैसे जैसे समय की समीपता आती जा रही है वैसे वैसे कारण भी बढ़ने ही है, क्योंकि बाबा जब भी कोई बात कहता है हमें मुरली के अंदर तो बाबा को हमेशा टाइटल दिया जाता है जानी जानन हार, वो सब कुछ जानता है। हाँ, बाबा के पास बड़ी टीवी में हर एक बच्चे की मन की स्थिति का भी दर्शन हो जाता है, लेकिन बाबा को जानी जानन हार उस बात को लेकर के नहीं कहा है। बाबा जानी जानन हार है तो आने वाले समय को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये 2007 का समय अगर है या उसके बाद का समय है वो समय कौन सा आने वाला है, उसके लिए कहा जानी जानन हार। और जानी जानन हार अपने बच्चों को आने वाले समय के बारे में अगर सावधान न करे तो कौन उसको भगवान के रूप में मानेगा। जानी जानन हार है तो वह समय को अच्छी तरह जानता है कि ये समय कौन सा आ रहा है। इसलिए बाबा ने पहले ही बता दिया कि ये समय में 2007 में कारण अनेक आने वाले हैं। इसलिए बाबा पहले से ही बता देता है, बाबा कारण सुनना नहीं चाहता है, माना कारण आने वाले हैं ना, तो बाबा हमेशा कभी नेगेटिव बात नहीं करता है। हम इंसान नेगेटिव बात पहले करते हैं लेकिन भगवान है तो भगवान कभी नेगेटिव बात पहले नहीं करता है, बाबा हमेशा पॉजिटिव अप्रोच को अपनाता है। इसलिए ये बच्चे को घबरा करके नहीं कह सुनाता है कि बच्चे आने वाले समय में समस्याएं बहुत आने वाली है, कारण बहुत, नहीं तो बच्चे डर जाएंगे। इसलिए बाबा ने बच्चों को लक्ष्य ये दे दिया कि बच्चे निवारण स्वरूप बनो, समाधान स्वरूप बनो, इस वर्ष को इस रूप में मनाओ। भावार्थ बाबा का ये है कि ये साल में आने के लिए कारण अनेक होंगे आपके सामने, जो आपके पुरुषार्थ में विघ्न बनेंगे, जो आपके जीवन के उसमें सशक्तपन में कमजोरी लाने के कारण अनेक होंगे, समस्याएं अनेक आने वाली है ये मान लो, ये है ही वर्ष समस्या का। इसीलिए बाबा ने हमें लक्ष्य दिया समाधान स्वरूप बनो। तो समस्याएं अनेक आने वाले हैं, कारण अनेक आने वाले हैं, लेकिन बाबा ने जब पहले ही बच्चों को सावधान, खबरदार, होशियार, ये तीनों शब्द जो बाबा ने कहा, खबरदार, होशियार, सावधान, इसका मतलब ये साल से हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि कितने भी कारण क्यों न आए, कितनी भी समस्याएं हमारे सामने क्यों न आए, लेकिन हमें मुक्त रहना है, हमें इन कारणों के वश में नहीं आ जाना है, हमें उन समस्याओं के वशीभूत नहीं होना है, लेकिन हमें स्वयं को मुक्त रखना है और निरंतर हमारी मुक्ति की अवस्था रहे, समाधान स्वरूप बन करके रहे, उस रूप में हम अपने आप को तैयार करें। तो ये बाबा का भाव है कि ये साल को मुक्ति वर्ष मनाना, सेल्फ लिबरेशन। कोई हमें मुक्त नहीं करेगा। बाबा जब इतना मार्गदर्शन दे रहा है बाबा भी बच्चों को शक्ति दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, श्रीमत दे सकता है, लेकिन पुरुषार्थ तो स्वयं को करना है। भगवान हमारे पुरुषार्थ में इंटरफियर नहीं करेगा। इसी तरह कोई आत्मा भी हमारे पुरुषार्थ में इंटरफियर नहीं कर सकती है, हमारे कर्म में, हमारे जीवन में इंटरफियर नहीं कर सकती। हम ही खुद रिस्पॉन्सिबल है जो भी हमारे जीवन में आएगा उसके लिए। तो तब कहा कि पुरुषार्थ हमें स्वयं करना है और मुक्त भी हमें स्वयं बनना है। तो अपने आप को देख करके ये विधि को अपनाते हुए हमें स्वयं को मुक्त करने की विधि के बारे में सोचना है। तो इसलिए कहा ये ट्रायंगल पुरुषार्थ हर कदम में हमें बहुत मदद करेगा। अगर हम इसको अपने संस्कारों में ढाल ले तो उससे हम जो बनाना चाहता है बाबा ने इसीलिए एक शब्द का प्रयोग, एक लाइन का प्रयोग किया 18 जनवरी की मुरली में कि बाप दादा की आश क्या है कि बाबा कोई बच्चों से कारण नहीं सुनना चाहते हैं। पहली मुरली में भी बाबा ने विदेशियों के सामने जब मुरली चलाई तो बाबा ने यही बात कही थी कि बच्चे समथिंग समवन ये शब्द बाबा सुनना नहीं चाहते हैं। तो पहली मुरली 31-10 की मुरली और ये 18 जनवरी तक की मुरली में बाबा का भाव उसी लिंक से कनेक्टेड है कि कारण अनेक आएंगे, समस्याएं अनेक आएंगे, लेकिन बाबा उन कारणों के बहानेबाजी को सुनना नहीं चाहता है। क्योंकि बच्चों के भी यही कमी कमजोरी है कि बाबा के आगे वो बहानेबाजी रख देते हैं, बाबा क्या करे, ये कारण आया तो हम क्या करें। इसीलिए बाबा ने पहले ही बच्चों को सावधान कर दिया है कि कारण अनेक आएंगे, समस्याएं अनेक आएगी, लेकिन बाबा उस बात को सुनना नहीं चाहता है। अब हमें अपने आप में एक प्लान बनाना होगा कि मुझे अपने पुरुषार्थ की विधि को किस रूप से अपनाना है ताकि ये कारण जो आए उसको हम सहज क्रॉस कर दें, ये समस्या जो आए उसमें हम समाधान स्वरूप रहे। तो अपना सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमारी वास्तविकता है उसका रियलाइजेशन हम करें। और उसके लिए बाबा ने मुरली में विधि भी बताई है कि हर रोज अपने आप को स्वमान की सीट पर सेट करो, रोज अलग अलग स्वमान से अपने आप को श्रृंगारित करो। और अमृत वेले जब हम वो स्वमान की सीट को अपना लेते हैं तो हो सकता है कि उसी दिन उस स्वमान की सीट को हिलाने के लिए माया की कमजोरी आएगी, लेकिन हिलना नहीं है मुझे, ये दृढ़ संकल्प जो बाबा ने कहा। अब खाली दृढ़ संकल्प नहीं करना है लेकिन एक प्रतिज्ञा करना है, अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि ये जो स्वमान को हमने अपनाया है उससे हम हिले नहीं, उससे हम डोले नहीं, उसको अचल अडोल हमारे जीवन के अंदर बना ले। इतनी आत्मिक शक्ति को हम विकसित करके बाहर ले आए कि जो ये कमजोरियां हमें कहीं भी कोई भी रूप से हिलाएंगी नहीं। तो आने वाले पूरे साल के लिए बाबा ने एक विजन दे दिया है हम बच्चों को कि हमें ये साल को कैसे मनाना है। और ये गोल अगर जितना हमारे सामने क्लियर रहेगा उतनी कोई भी बातों में परिस्थितियों के वश हम नहीं होंगे, लेकिन उसके ऊपर विजयी बनना हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो ये बाबा ने जो कहा सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू सेल्फ चेकिंग, तो चेक चेंज एंड फ्लाई या चेक चेंज एंड रिक्रिएट, अपने आप को करते हुए हम पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हुए जीवन में उन्नति को प्राप्त करते जाए और बाप दादा की जो आश है उस आश को पूरा करने में हम नंबर वन जरूर ले। जो बाबा ने कहा बाबा उस बच्चे को प्राइज देगा कि जो अपने आप को ऐसा बनाएगा। तो ये पांच कदम सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रिकवरी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ एम्पावरमेंट एंड सेल्फ दीदार क्यों नहीं
प्रभु आपकी उदारता पार है नहीं कभी पार है नहीं
कहीं पास।